दिन भर तारीख 22 फरवरी दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। एमएनएसटी इंटरनेशनल ने दक्षिण एशियाई देशों में मानवाधिकार हनन पर जताई चिंता। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट आंदोलन है जारी।
केंद्र और राज्य दोनों जगह आरक्षण हो। जो मुकदमे पिछले फरवरी आरक्षण आंदोलन में हमारे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज किए गए थे वो वापसी हो।
किम जोंग नम की संदिग्ध मौत ने दुनिया भर में इस तरह की मौतों की यादें ताजा की।
19th सेंचुरी ऑनवर्ड जो आप पॉलिटिक्स देखते हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट्स ने अपोजिशन को एलिमिनेट करने के लिए इस किस्म के इकदाम किए। अमेरिका ने कई दफा फिडेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश की।
दुनिया जहां आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों में मानवाधिकारों को लेकर गहरी चिंता जताई है। इन देशों में सरकारों पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का इस्तेमाल, लोगों की आज़ादी को नुकसान पहुंचाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए काम करने और अपनी आवाज़ सुनाने की स्वतंत्रता को सीमित करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पत्रकारों और ब्लॉगरों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि उनकी हत्याएं भी हो रही हैं, वो भी गैर सरकारी लोगों के हाथों। हरियाणा में सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग पर चल रहे जाट आंदोलन का आज 25वां दिन है। सोमवार को पानीपत में प्रदर्शनकारी जाटों और हरियाणा सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। जाट समुदाय के लोगों ने अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार जाट समुदाय के लोग अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं और आंदोलन पर अड़े रहने की बात कह रहे हैं। जाट नेताओं ने घोषणा की है कि वो 26 फरवरी को काला दिन मनाएंगे और सरकार की नीतियों के विरोध में काली पगड़ी पहनेंगे। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने सरकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत से बाहर जाने की कोशिश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कोशिश असंवैधानिक है क्योंकि इसके लिए सरकार को पहले संसद से मंजूरी लेनी होगी। जज फिनियास मोजापिलो ने फैसला सुनाते हुए कहा,
The notice of withdrawal from the Rome Statute of the International Criminal Court.
रोम स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट से बाहर जाने का 19 अक्टूबर 2016 को दिया गया नोटिस असंवैधानिक और अवैध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को कैबिनेट की तरफ से बिना संसद की मंजूरी के बगैर बाहर जाने का नोटिस असंवैधानिक और अवैध है। कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों को इस दिशा में सही कदम उठाने के साथ ही राष्ट्रपति को ये नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष हरमन फॉन रॉम्पाय ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने में लगने वाले 2 सालों में यूरोपीय संघ उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि यूरोपीय संघ के पास वरीयता सूची में दूसरे देशों की सरकारें हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ में पहले से ही यूरोजोन और शेंगेन जोन के दूसरे सदस्य देशों की तुलना में सबसे कम जुड़ाव वाला देश है। ये अजीब है कि उसके साथ समझौता तो आसान है, लेकिन फिर भी उसका बाहर जाना एक कठिन प्रक्रिया है। ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर जाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। ब्रिटेन बाकी यूरोपीय देशों की तरह ना तो यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करता है, ना ही शेंगेन वीजा के नियमों से बंधा है। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि इस सदी का सबसे बड़ा कारोबारी समझौता अमल में आ गया है। इस समझौते की WTO के बहुमत देशों ने पुष्टि कर दी है। इसका मकसद सीमा पार से होने वाले कारोबार को बेहतर बनाना है। संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो अजीविदो का कहना है कि इस समझौते की मदद से गरीब देशों के लिए व्यापार के खर्चों में औसतन करीब 14% की कमी आएगी। समझौते की पुष्टि करने वाले देशों में अमरीका भी शामिल है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उज्बेक पत्रकार और विपक्षी कार्यकर्ता मोहम्मद बेगजानोव को 18 साल तक कैद में रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। मोहम्मद बेगजानोव देश के निर्वासित विपक्षी नेता मोहम्मद सालेह के भाई हैं। ताशकंद में 1999 के सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर उन्हें पकड़ा गया था। उन पर उस वक्त के उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोव की हत्या की कोशिश, विद्रोह करने के आरोप में भी मुकदमा चला। बेगजानोव का कहना है कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वे मनगढ़ंत आरोपों को स्वीकार करने पर विवश हुए। जानकार मान रहे हैं कि उनकी रिहाई पिछले दिसंबर में राष्ट्रपति बने शौकत मिर्जियायेव की नई नीतियों का नतीजा हो सकती हैं। सोमालिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो ने अपने पहले भाषण में देश की सुरक्षा मजबूत करने और सोमालिया के साथ सुलह के लिए काम करने की बात कही है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में आपने निखिल रंजन से सुना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों में मानवाधिकार हनन को लेकर गहरी चिंता जताई है। इन देशों में सरकारों पर अपनी प्रभुसत्ता और सुरक्षा का इस्तेमाल लोगों की आज़ादी को नुकसान पहुंचाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए काम करने व अपनी आवाज़ सुनाने की स्वतंत्रता को सीमित करने का आरोप लगाया गया है। देशहित व राष्ट्र की रक्षा के नाम पर सरकारें मानवाधिकारों के रास्ते में आ रही हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली, जैसा कि हमने बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, सुनिए दिल्ली से हमारे संवाददाता शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में।
गोली लाठी की सरकार
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कराची से लेकर ढाका और दिल्ली तक हर जगह अभिव्यक्ति की आज़ादी अत्यंत दबाव में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण एशिया में मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को जबरदस्त चुनौतियों का सामना है। एमनेस्टी के पदाधिकारी रघु मेमन ने बीबीसी को बताया,
2016 में हमने देखा कि साउथ एशियाई हुकूमतों ने सलमियात और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इंसानी हकूक पर हमला किया। सहाफ़ियों, इंसानी हकूक के कारकुनों और तंजीमों को भी अपना काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें डराया गया, धमकाया गया और उन पर जानलेवा हमले भी हुए।
पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में पत्रकार, ब्लॉगर्स, गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कठिनाइयों से गुजर रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल कहते हैं,
गवर्नमेंट्स डिसेंट टॉलरेट नहीं कर रही हैं। दूसरा ये है कि एक नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल तीनों कंट्रीज में बढ़ते जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो ये ऑब्वियस है, जो अटैक हुआ है आपने देखा है दरगाह पे, बांग्लादेश में ब्लॉगर्स पे अटैक हो रहा है, पर इंडिया में जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सरकार से जुड़े हुए नॉन स्टेट एक्टर्स हैं।
सोशल मीडिया की आज़ादी के इस दौर में छात्रों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों की आवाज़ें अब कमजोर पड़ने लगी हैं। कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज कई महीने कैद में थे।
बार बार इंटरनेट शटडाउन होता है, बार बार लोगों को फेसबुक पे कुछ लिखने की वजह से अरेस्ट किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं हालिया दौर में जब मैं अरेस्ट हुआ, मुझे भी ये बताया गया कि जो मैं लिखता हूँ फेसबुक पे और बाकी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव है। लगता ये है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई है। जो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हुआ, सोशल मीडिया जो हर एक शख्स के पास एक थोड़ा सा पावर सा आ गया कि वो कुछ भी बोल सकता है सेंसरशिप के बगैर, गवर्नमेंट जो है वो इनसे खौफजदा है।
गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार का विचार है कि दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है।
देश के ही नागरिक जो शोषित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जो समाज के अंदर वायलेंस को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक माहौल बनाना चाहते हैं, एक टॉलरेंट माहौल बनाना चाहते हैं, उनको अटैक किया जाता है।
हरतोष सिंह बल कहते हैं कि दक्षिणपंथी विचारों के उत्थान से मौजूदा स्थिति में किसी परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आते।
मैं जो जिन नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इनका सोसाइटी में सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। जो राइट विंग फोर्सेज हैं, इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो जो स्ट्रेंथ है वहीं से आ रही है। इसके अगेंस्ट खड़े होके बोलना, स्टैंड लेना जरूरी है, पर काफी हद तक हमारी सोसाइटीज में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं।
दिलचस्प पहलू यह है कि पूरे दक्षिण एशिया में हर जगह जनतांत्रिक सरकारें कायम हैं। देशों के बीच तनाव, धार्मिक नफरतें और आतंकवादी कार्रवाइयां भी दक्षिण एशिया में मानवाधिकार को संगीन नुकसान पहुंचा रही हैं। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दक्षिण एशिया के देशों में मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। पिछले 25 दिनों से हरियाणा में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य मांगों को लेकर जाट आंदोलन जारी है। कल पानीपत में प्रदर्शनकारी जाटों और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। मुख्य सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यों वाली सरकारी समिति ने जाट नेताओं से 3 घंटे से भी अधिक समय तक बात की थी। अब जाट नेताओं ने घोषणा की है कि वो 26 फरवरी को काला दिवस मनाएंगे। एक मार्च से प्रदर्शनकारी सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जाट 2 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे व आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। हरियाणा में हर जिले और प्रखंड में जाटों के धरने जारी हैं, जिसने कि राज्य सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जाटों के आंदोलन को देखने और उनकी मांगों को सुनने के लिए रोहतक पहुंचे हमारे सहयोगी सलमान रावी।
हरियाणा के रोहतक के पास जशिया गांव में लोगों का हुजूम जमा है। ये समूह है जाटों का, जो अपने लिए केंद्र और राज्य में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से सड़कों पर धरना दे रहे हैं। ठीक एक साल पहले फरवरी माह में पूरे हरियाणा में आरक्षण के लिए जाटों के आंदोलन के दौरान कई दिनों तक हिंसा चलती रही। इस हिंसा में 31 लोग मारे गए थे और इस दौरान हुई आगजनी और लूटपाट की घटनाओं में लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब अपनी आरक्षण की मांग के साथ साथ जाट समुदाय के लोग हिंसा के दौरान मारे गए अपने लोगों के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। जाट नेता किशन लाल हुडा कहते हैं,
हमारी 7 मांगे हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह आरक्षण हो। जो मुकदमे पिछले फरवरी आरक्षण आंदोलन में हमारे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापसी हो। जो हमारे भाई उस आरक्षण आंदोलन में मारे गए थे उनके परिवारों को मुआवजा मिले।
इस बार आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे जाटों के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका काफी अहम है, जो बड़ी संख्या में धरना स्थलों पर नजर आ रही हैं। इन्हीं में से एक हैं मीना मकरौली, जो जशिया के पास ही रहती हैं। मीना को आक्रोश है कि उनका आंदोलन पिछले 25 दिनों से चल रहा है, मगर सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उन लोगों से आकर बात तक नहीं की।
जो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी हैं, सरकार उनकी पेंशन बांधने का काम करो। 5,000 रुपए पेंशन बांध दो, ये हमारे लड़ाने से थोड़ी ना भलाई होगी।
राजकली गढ़ौली गाँव की रहने वाली है। उनका कहना था कि इस बार आंदोलन में महिलाएं ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
शांतिपूर्वक बैठे हैं हम, पहले तो किसी को कुछ कहे नहीं गए। अगर ये अब की बार सरकार ने हमारे भाइयों को और बच्चों को पकड़ने की कोशिश करी, कोई भी साजिश करी, तो हम महिला सबसे आगे आएंगी और हमारी मांगे पूरी कर दो, हम चले जाएंगे। हम 25 दिन से बैठे हैं, सारे घर के काम छोड़े हुए बैठे हैं, और चाहे हमने 2 साल लाग जाओ जी, हम नहीं उठेंगे। और ये कह रहे हैं कि देशद्रोही, फलाना देशद्रोही, धकड़ा देशद्रोही। सैनिक को पकड़ो ना, वो हमें कभी तक कहता बलात्कारी, कभी कुछ कहता, गाली देता माँ बहन को, उसके ऊपर तो आज तक केस नहीं डाला इन्होंने। हमारे ऊपर देशद्रोही, देशद्रोही तो हम सारी माँ बहन भी हैं।
जाट आरक्षण आंदोलन समिति के महासचिव अशोक बलहारा कहते हैं कि अपनी मांगों को लेकर इस बार वो सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं।
सरकार बार बार कहती है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, दरवाजे नहीं दिल खोलने की बात है, सरकार उन मांगों को पूरा करे, वरना हम अपना असहयोग आंदोलन चलाएंगे, जिसके लिए सरकार को बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि अमन चैन बहाल करना सरकार का काम है। सारे अधिकारी है, पुलिस है, रोड पर रहेगी, हम शांति से यहाँ बैठे रहेंगे। हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, आश्वासन नहीं।
आने वाली 26 फरवरी को जाट आरक्षण समिति से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को लेकर काला दिवस मनाने का फैसला किया है। वहीं 2 मार्च को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाटों ने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। सलमान रावी, BBC, रोहतक, हरियाणा।
शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में इस बार दल लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली में कहा, उत्तर प्रदेश कसाब नामक बीमारी से ग्रस्त है, और यहां पर कसाब का मतलब है का से कांग्रेस, सा से सपा और बा से बसपा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4th चरण में 12 जिलों की 53 सीटों के लिए कल वोट पड़ने हैं। प्रचार थम चुका है, मगर जिस तरह का चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत होने के साथ साथ तल्ख भी होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने लखनऊ में कुछ युवा मतदाताओं से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो इस तरह की बयानबाजी को कैसे लेते हैं और क्या वो मतदाता ऐसे बयानों से प्रभावित होते हैं।
हमारे साथ कुछ युवा है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी बयान आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो शमशान कब्रिस्तान और ईद पे बिजली देने, दिवाली पे बिजली देने, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, आप उसको क्या देख रहे हैं? ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं?
राजनीति में मेरा इतना इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन ये सबसे जो निम्न स्तर की राजनीति होती है, ये उनमें से एक है।
लेकिन अगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं? क्या उनको लगता है कि ऐसे बयानों से उनको वोट मिलेंगे? कोई तो वजह होगी।
नेता ये मतलब नेता लोग ये सोचते हैं कि मतलब अगर हम मतलब धार्मिक बात करेंगे, धार्मिक मुद्दों को उठाएंगे तो मतलब जैसे हिंदू वोट से सपोर्ट में ज़्यादा मिलेगा, मुस्लिम वोट से नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ से प्रधानमंत्री ले लो या फिर ओवैसी को ले लो, सब अपने अपने मतलब व्यू रखते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं लोग। और सबसे बड़ा तो मैं दो पंक्ति भी कहना चाहूँगा, सारे धर्म कहते हैं प्यार ही इबादत है, फिर न जाने मेरा मुल्क क्यों खून में न आया है।
बहुत बढ़िया बात आपने कही, और यही मेरा सवाल भी यही है कि जो इस तरह का कहते क्यों है?
आप जानते हैं कि एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया में या यूपी में अगर बात करें तो बहुत कम है।
ये जैसे भाई ने अभी बोला कि मतलब वोट इंसान इस चीज़ को देख के कहता है कि ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश में सरकार देखी जाए तो हमें मुस्लिम हूँ, एक जो उत्तर प्रदेश में सत्ता है अखिलेश यादव की है वो मुस्लिम नहीं है। हमने ये नहीं सोचा कि मतलब वो हमारे धर्म का है, बस ये लगा कि हाँ वो युवा है एक और अच्छा
यही बात काम करेगा। यही बात मैं पूरी करने वाला था, लिटरेसी रेट जो हमारे यूपी में है वो बहुत कम है। अब दलितों की बात ले लो, उन्हें नहीं पता कि मायावती क्या करने वाली है या दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मायावती दलित है और वो हमारी लीडर हैं तो वोट उनको देंगे।
मतलब आप कहने का मतलब कि जाति और धर्म पे ही हमारे यहाँ वोट मिल रहे हैं?
हाँ, जाति और धर्म पे ही वोट मांगे जा रहे हैं आजकल सब, अपना मुसलमानों का वोट
मांगे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या लोग देवी जाति और धर्म के नाम पे रहे?
जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी कई जगह पे मैंने देखा है कि मुस्लिम जो होते हैं वो भी नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाति धर्म के नाम पे ही वोट दिए जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी हमारे लिए विकास कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात को इतना डेवलप किया, वो यूपी को भी डेवलप करने जा रहे हैं, तो इस वजह से वो नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर को यहाँ पे वोट दे रहे हैं।
लेकिन वही नरेंद्र मोदी क्यों कब्रिस्तान और इस तरह की बात कर रहे हैं?
उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, जो नीचे स्तर की राजनीति खेल रहे हैं वो यहाँ पे आके यूपी में इस तरह से आप वोट नहीं मांग सकते। आपको मांगना है तो आप विकास धर्म पे मांगिए।
जैसे जैसे इलेक्शन मोड नजदीक आता है, मोदी जी का मोड भी बदल जाता है। तो जब बिहार में चुनाव होने वाले थे तब भी मोदी जी ने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे जिनकी उम्मीद नहीं थी उनसे।
अब सिर्फ धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगोगे आपको वोट नहीं मिलने वाला है।
कोई भी उम्मीदवार रिप्रेजेंट करता है एक कम्युनिटी को, तो उस उम्मीदवार की कुछ ना कुछ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे अयोग्य उम्मीदवार हैं तो जो वहाँ पे उस कुर्सी पे पहुँच जाते हैं, तो फिर अगर ऐसा वो करते हैं, अगर वो ऐसी बयानबाजी करते हैं तो हमारे लिए सरप्राइज नहीं है वो।
आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो राजनीति में आ रहे हैं, जिनको की पॉलिसी डिसीजन लेना है सरकार का, राज्य का और देश का, उनके लिए भी कुछ न कुछ शैक्षिक योग्यता जरूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए, बीबीसी से बात करने के लिए।
चुनावी हलचल में हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र बात कर रहे थे कुछ मतदाताओं से, कुछ युवाओं से, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि वोट देते समय उनके मन में क्या रहता है।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
तो जैसा कि सुना आपने, आज का दिन दुनिया जहां का दिन होता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की मलेशिया में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने लोगों के जहन में उन मौतों की याद ताज़ा कर दी है जो कि अलग अलग दौर में दुनिया के हर हिस्से में नजर आती रही हैं। दक्षिण एशिया तो खासतौर से इस तरह की मौतों का गवाह रहा है, लेकिन यूरोप और अमरीका भी बहुत पीछे नहीं है। इस बार के दुनिया जहान में निखिल रंजन इसी तरह की कुछ संदिग्ध मौत और उनके पीछे की कारण की कहानी सुना रहे हैं।
दुनिया जहान।
रोमन सम्राट जूलियस सीजर, मुगल शासक शाहजहां के बेटे दाराशिको और कोरियाई नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नम की मौत में इतिहासकार एक तरह की समानता देखते हैं। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर इफ्तिखार मलिक।
ग्रीक पीरियड में, इजिप्शियन और रोमन पीरियड में इस किस्म की असैसिनेशन हुई है, जो मूवमेंट स्टेट्स ने या जो क्लेमेंट्स होते हैं बादशाहत के, उन्होंने किए हैं। और उसमें वो भाइयों को भी माफ नहीं किया। आपने देखा कि ये ऑटोमन एम्पायर में होते थे, और उसके अलावा मुगल्स में भी ये हुई है शाहजहां के जमाने में, औरंगजेब के जमाने में। 19th सेंचुरी ऑनवर्ड जो आप पॉलिटिक्स देखते हैं गवर्नमेंट्स की, उसमें कुछ गवर्नमेंट्स ने अपोजिशन को एलिमिनेट करने के लिए इस किस्म के इकदाम किए। अमरीका ने कई दफा फिडेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश की, इसी तरीके से सोवियत यूनियन और उसके बाद रशियन पे ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपने अपोनेंट्स को, खा वो रशियंस थे या वो वैसे यूरोपियंस थे, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की।
कभी ये सरकारों, चरमपंथी गुटों, खुफिया एजेंसियों की सोची समझी साजिश के तहत हुआ तो कभी कुछ सिरफिरों ने अकेले ही ऐसी हत्याओं को अंजाम दिया। बहुत पीछे ना जाएं तो भी विश्व युद्धों और फिर उसके बाद के दौर में ऐसी कई हत्याएं नजर आती हैं जिनके मकसद को लेकर लंबे समय तक रहस्य बना रहा। वो 29 जून 1914 की एक खुशनुमा सुबह थी। सरायेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांस फर्डिनांड अपनी बीवी सोफी के साथ खुली कार में एक बम धमाके के घायलों को देखने अस्पताल जा रहे थे। लैटिन ब्रिज के पास सड़क के एक तंग हिस्से में गाड़ियों का काफिला अचानक रुका और सामने के कैफे में बैठे प्रिंसिप तेजी से सामने आए। 5 फीट की दूरी से उन्होंने 2 गोलियां दागी और 10 मिनट के भीतर शाही दंपति की मौत हो गई। सरायेवो तब बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी था और ये राज्य ऑस्ट्रो हंगेरियन के अधीन था। प्रिंसिप सर्बियाई उग्रपंथियों के एक गुट से जुड़े थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना ने बारूद की एक ऐसी ढेर में चिंगारी का काम किया जिसमें लाखों लोगों की जान गई और दुनिया का नक्शा बदल गया। इसी घटना से नाराज ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया पर हमला बोल दिया और उस जंग का आगाज हुआ जो आगे चलकर पहला विश्व युद्ध कहलाया। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर अनुराधा शेनॉय,
इतने इश्यूज थे, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, अलग अलग तरीके के नेशनलिज्म, इंटरस्टेट राइवलरीज, द राइज ऑफ नेपोलियन, इतने सालों की वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, तो बहुत सारी कलेक्टिव चीजें थी जिससे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये वॉर्स हुई। पर एक ट्रिगर रहता है जो जिससे वो एग्जैसिबेट हो जाता है। बहुत सारी इश्यूज थी पर हाँ, एक ट्रिगर मानते हैं क्योंकि वो बस वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ मौका मिले जिससे कोई वॉर छिड़ जाए। कोई और ट्रिगर भी हो सकता था पर ये इम्पोर्टेंट ट्रिगर था।
बड़े नेताओं और राष्ट्र प्रमुख की हत्याओं से अलग कुछ ऐसी भी हत्याएं इतिहास में दर्ज हैं जिनमें बड़ी गोपनीयता से बेहद उन्नत तरीकों का इस्तेमाल कर कुछ लोगों को निशाना बनाया गया। 1978 में ऐसी ही एक हत्या हुई थी जॉर्जी मार्कोव की। बुल्गारियाई लेखक पत्रकार मार्को को लंदन में बीबीसी के मुख्यालय रहे बुश हाउस के पास एक छाते की नोक से हमला कर मामूली चोट पहुंचाई गई। बाद में पता चला कि वो नोक जहर में बुझी थी, जहर घातक था और उनकी मौत हो गई। अम्ब्रेला मर्डर नाम से कुख्यात इस हत्या के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का हाथ होने की बात कही गई। कहा जाता है कि मार्कोव ने अपने लेखन में बुल्गारियाई सरकार की आलोचना की थी और उनकी हत्या के लिए बुल्गारियाई सरकार ने केजीबी से मदद मांगी थी। खुफिया एजेंसियां अपने देश की सीमाओं के बाहर जाकर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं और इसके पीछे जानकार खास मकसद देखते हैं। इफ्तिखार मलिक,
इसराइल ने दुबई में एक फिलिस्तीनी उसको कुछ साल पहले जो है किया और प्यूटिन के जो क्रिटिक थे, पहले वो केजीबी में थे, लिटवेनको, 2006 में उन्हें लंदन के होटल में पॉइजन दे के मारा गया। तो इस किस्म के रिस्क जो हैं ये स्टेट्स लेती हैं कि वो समझते हैं कि ये लोग खास तौर पे मुल्क से जब बाहर रहते हैं तो शायद इनकी न्यूसा वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए लगता है कि ये स्टेट्स जो हैं ये इस किस्म के जो रिस्क और पॉलिसीज लेती हैं और फिर उसके बाद खामोश होकर चुप करके बैठ जाती हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं करती।
रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक पूर्व एजेंट को भी नवंबर 2006 में इसी तरह निशाना बनाया गया। अलेक्जेंडर लिटविनेंको एक हत्या के सिलसिले में सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उसी दौरान लंदन में उनकी हत्या कर दी गई। एक रेस्टोरेंट में उनकी कॉफी में जहर मिला दिया गया था। 3 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उनके जिस्म में पोलोनियम 210 की मात्रा पाई गई। लिटविनेंको और कई दूसरे लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपने अधिकारियों पर एक रूसी कारोबारी की हत्या के आदेश देने के आरोप लगाए। सरकार ने इन लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का दोषी पाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वो अपने परिवार के साथ भागकर लंदन आ गए। लिटविनेंको की पत्नी के लंबा अभियान चलाने के बाद 2015 में ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस मामले की जांच की। ब्रिटानी एजेंसी ने उनकी मौत को हत्या बताया और इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति का हाथ होने की बात कही। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया। अनुराधा शेनॉय,
एस्टैब्लिशमेंट के रूसी सरकार ने ही की थी, वो तो ये सब स्पेकुलेशन, मीडिया स्पेकुलेशन, लीक्स, इंटेलिजेंस लीक्स, कोल्ड वॉर और दोनों देशों के बीच में जो मतलब तनाव रहता है उसको मिला जुला के होती है। तो उस पे कोई एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं था कि वहां से किसने पॉइजन दी या क्या हुआ। ये जरूर था कि लिटविनेंको रूसी सरकार का एनिमी माना जाता था और उनका इंटरेस्ट था कि वो ना रहे, लेकिन वो ब्रिटेन में था और कैसे हुआ उसका वो क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं है। तो हम लोग किसी को पकड़ा नहीं गया, तो इनकंक्लूसिव जैसे कहते हैं, पर मीडिया स्पेकुलेशन, मीडिया पॉइंटर्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर कह सकते हैं।
इस वक्त जिस घटना को लेकर हलचल मची हुई है वो बीते हफ्ते मलेशिया में सामने आई। राजधानी कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पर एक शख्स को सामने से आती एक महिला ने रोका और तभी पीछे से एक दूसरी महिला ने उसे धक्का दिया। इसके बाद उस शख्स ने एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों से मदद मांगी और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जल्द ही पता चला कि उसे जहर दिया गया है और फिर उसके मौत की खबर आई। मलेशियाई अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले शख्स किम जोंग नम हैं और वो उत्तर कोरिया के वर्तमान नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई हैं। पुलिस को 4 संदिग्ध लोगों की तलाश है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मलेशिया से बाहर जा चुके हैं। महिलाओं को पकड़ा जा चुका है और उनका कहना है कि ऐसा करने के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। अब उत्तर कोरिया और मलेशिया के बीच में तनातनी है। एशिया प्रशांत मामलों के जानकार राहुल मिश्रा।
देखिए, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है असासिनेशन की, उसमें किम जोंग नम के प्रति फिट हो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी जो मलेशियन अथॉरिटीज से जो बातें सामने आ रही वो पूरी नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया के वहां पे एम्बेसडर हैं वो भी अभी काफी इंटेंसिटी के साथ डायलॉग में लगे हुए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि दुनिया के सामने वो बात, बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने ना आए। और जहां तक ये सवाल है कि व्यक्तिगत कारणों से किम जोंग की हत्या की गई, तो मुझे लगता है उसमें न मलेशियन सरकार को और न ही उत्तर कोरियन सरकार को कोई भी आपत्ति होगी कि वो बातें सामने आए। तो मुझे लगता है कुछ और समय देना पड़ेगा इस पूरे एपिसोड में जो तथ्य हैं उनके सामने आने के लिए। अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है या जो अभी तक मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है बिल्कुल है कि इसमें किम जोंग उनका ही हाथ है। ये इसलिए भी है कि इन्होंने इसके पहले अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों, उन लोगों पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कराए या उनको सीधे फांसी दे दी या मरवा दिया। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि किम जोंग नम की मृत्यु से कुछ फायदा उठा सकता हो।
साल 1983 में भी उत्तर कोरिया पर दक्षिण कोरिया के कुछ लोगों की हत्या करने के आरोप लगे थे। दक्षिण कोरियाई नेताओं के एक दल को म्यांमार में एयरपोर्ट से बाहर जाते वक्त बम से उड़ा दिया गया।
इतिहास में रंगून बॉम्बिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें दक्षिणी कोरिया के 5वें राष्ट्रपति छन दुवान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। रंगून बॉम्बिंग को हम उत्तर और दक्षिणी कोरिया के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए कि उत्तरी कोरिया ने ऐसे अटेम्प्ट्स उसके पहले भी किए, उसके बाद भी किए।
मुमकिन है कि ये कभी पता न चल सके कि किम जोंग नम की मौत के पीछे किसका हाथ था। खुफिया तंत्र और राजनयिक दांव पेच के अलावा एक और चीज है जो इन हत्याओं को छिपाने में कारगर है, वो है आधुनिक विज्ञान।
जो जो लोग इसके बारे में ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, मीडिया सेंसिटिव हो रहा है, सिविल सोसाइटी सेंसिटिव हो रही है, तो गवर्नमेंट्स और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो हैं वो अपनी कार्रवाइयां, अपने मैकेनिज्म और अपने इस किस्म के जो वो उनके टूल्स हैं उनको सोफिस्टिकेटेड बना रही हैं। तो जाहिर है साइंस को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोनेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, बजाय इसके कि उनको सीधी गोली मारी जाए। पहले ये था कि वो फिजिकली एलिमिनेट करते थे, अब जो है वो अपना ट्रेस नहीं छोड़ना चाहते।
कानून किसी को दोषी ठहराए इसके लिए सबूत की जरूरत होती है। पेशेवर अपराधी जब सरकारों को धोखा देने की तरकीबें निकाल लेते हैं तो फिर सरकारों के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। पर इतना जरूर है कि शकों सुबहों में ही सही, सच्चाई अपने सामने आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
दुनिया भर के संदिग्ध मौतों के पीछे की कहानी निखिल रंजन आपको सुना रहे थे आज की दुनिया जहां में, और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुबह नमस्कार भारत में भी सुन सकते हैं। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों में मानवाधिकार को लेकर गहरी चिंता जताई है। इन देशों में सरकारों पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का इस्तेमाल, लोगों की आज़ादी को नुकसान पहुंचाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए काम करने और अपनी आवाज़ सुनाने की स्वतंत्रता को सीमित करने का आरोप लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने सरकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत से बाहर जाने की कोशिश पर रोक लगा दी है। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष हरमन फॉन रोम्पाय ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने में लगने वाले 2 सालों में यूरोपीय संघ उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाएगा। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि सदी का सबसे बड़ा कारोबारी समझौता अमल में आ गया है। इस समझौते की WTO के बहुमत देशों ने पुष्टि कर दी है। उज़्बेक पत्रकार और विपक्षी कार्यकर्ता मोहम्मद बेगजानेव को 18 साल तक कैद में रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का मल्टीमीडिया पेज आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।